अय्यूब अध्याय 42, अध्याय 42 पद 1 और 2। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। ये बहुत जरूरी बात है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और ये भी कि आप उसे कुछ नहीं छिपा सकते। बाइबल में लिखा है कि किसी को किसी के बारे में यीशु से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर से आप कुछ छिपा नहीं सकते। बाइबल में ये भी लिखा है कि एक दिन हमारे विचारों का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर मनुष्य के विचारों और मनोकामनाओं को जानने वाला है। हम क्या करते हैं इसका न्याय नहीं किया जाएगा, परंतु हम जो करते हैं उसके पीछे हमारी छिपी हुई इच्छा का न्याय किया जाएगा। यीशु ने कहा, मत्ती 6 अध्याय पहला पद, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अर्थात हमारा काम तो देखने में धार्मिकता का हो, परंतु मन की इच्छा बुरी हो। मनुष्य से प्रशंसा पाने की इच्छा से किया जाने वाला काम अधर्म ही है। परमेश्वर हमारी इच्छा को देखता है। जब हमारे कामों को आग से परखा जाएगा, तब वे भूसे की तरह जल जाएंगे। यदि कुछ बचा तो इसका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा और उसके विचारों को खोजने वाला है। इसलिए अय्यूब कहता है, प्रभु मैं जानता हूं कि मैं तुझसे अपना एक भी विचार छिपा नहीं सकता। अध्याय 42 पद 3, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? अब अय्यूब स्वीकार करता है। अध्याय 42 पद 3 में आगे लिखा है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। प्रभु जी, मैं तो बेसमझ बातें कर रहा था, जो मैंने कहा उसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अध्याय 42 पद 4 और 5, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। ये अय्यूब की खोज है कि परमेश्वर के बारे में सब कुछ तो उसने सुना था, परंतु अब उसने आंखों से उसे देख लिया है। जब परमेश्वर हमारे मस्तिष्क से हमारे मन में प्रवेश कर जाता है, तब वो दिन हमारे लिए बड़ा महिमा का होता है। परमेश्वर, मैंने लोगों को तेरे बारे में कहते सुना था, वरन मैंने भी तेरे बारे में चर्चा की है, परंतु मैं वास्तव में जानता नहीं था, मैं वास्तव में समझता नहीं था। मैं तो देखने में असमर्थ था, परंतु अब मैं सुनता हूं और देखता भी हूं। जब हम परमेश्वर को देखने लगते हैं तो हमारे जीवन में कैसा अंतर आ जाता है। मत्ती 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर का जीवन अनुभव करने लगते हैं, तब वो समय कैसा महिमा का होता है। तब धर्मशास्त्र भेद नहीं रह जाता है, आत्मिक जीवन का एक संपूर्ण क्षेत्र खुल जाता है, एक नया क्षेत्र और मेरा नया जन्म हो जाता है, जो आत्मा का जीवन है, तथा मैं आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाता हूं। उस समय मैं परमेश्वर के बारे में सुनता ही नहीं, उसे देखता भी हूं। इसके परिणाम स्वरूप मुझे अपने बारे में भी एक नया पहलू दिखाई देती है, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अध्याय 42 पद 6, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। जब दानियल ने परमेश्वर का प्रकाशन पाया तब उसने कहा, दानियल 10:8, इससे मेरा बल जाता रहा, वो भय उत्तर हो गया। पत्रस ने यीशु को पहचान कर कहा, लूका रचित सुसमाचार 5:8, हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। यशया ने परमेश्वर को देखा तो कहा, यशया 6:5, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों में रहता हूं। परमेश्वर को देखने पर आपको अपने बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आप में पहले कभी नहीं था। मनुष्य सामान्यतः अपने आप को भला मानता है, परमेश्वर को बस देखना ही होता है कि मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है और वो दया का भीख मांगने लगता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। जब मैं अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं और मैं अपने को धर्मी नहीं देखता कि धोखा दूं, अपने आप को उचित समझूं। परंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक कि मैं परमेश्वर को देख ना लूं। परमेश्वर, मैंने तेरे बारे में सुना था, अब मैं तुझे देखता हूं, अब मैं अपने आप को देखता हूं, मैं स्वयं से घृणा करने लगा हूं। 42:7-8। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास आयूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास आयूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयूब की सी ठीक बात नहीं कही। मैं आपको ये बता दूं कि परमेश्वर को ये कदापि स्वीकार्य नहीं कि आप उसके बारे में झूठी बातें कहें या ऐसी बातें कहें जो उसने कभी नहीं कही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में झूठी धारणाओं का प्रचार करते हैं। परमेश्वर इन बातों को सहन नहीं करता है। उसने एलीपस से कह दिया, तुम लोग मेरे विषय में सही नहीं बोलते हो, तुम लोग आयूब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा क्योंकि तुमने मेरे बारे में गलत विचारधारा प्रस्तुत की है, अतः तुम आयूब से प्रार्थना करने की याचना करो। 42:9-11। ये सुन तेमानी एलीपस शूही बिलदाद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने आयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें, मुझे आश्चर्य होता है कि वो उस समय कहां थे जिस समय वो दुख में था। 42:11-14। और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, अर्थात यमीन का अर्थ है कपोत। अध्याय 42 पद 14 में आगे लिखा है, दूसरी का नाम केसिया अर्थात सुगंधित मसाला। अध्याय 42 पद 14 के अंत में लिखा है, और तीसरी का केरन हपुक रखा अर्थात रंग से भरा सींग। मैं नहीं जानता एक कन्या को ये नाम क्यों दिया जाता था, रंग से भरा सींग। अध्याय 42 पद 15 और 16, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो आयुब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद आयुब 140 वर्ष जीवित रहा। यदि आयुब को इब्राहिम का समकालीन माना जाए तो 180 वर्ष की आयु का होना असामान्य नहीं है। इब्राहिम भी 180 वर्ष तक जीवित रहा, जल प्रलय के बाद 2 पीढ़ी तक। दीर्घकालीन जीवन उस युग में आम बात थी। अतः आयुब इस घटना के बाद 140 वर्ष तक जीवित रहा था। अध्याय 42 पद 16 में आगे लिखा है, और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया अर्थात पोतों के पोते। अध्याय 42 पद 17 में, निदान आयुब वृद्ध अवस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। आयुब का वृत्तांत बड़ा दिलचस्प था। यह वृत्तांत दुख और कष्टों के बारे में बताता है। एक धर्मी जन को कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? अधर्मी प्रायः समृद्ध क्यों होते हैं? यद्यपि यह कहानी इन विषयों पर चर्चा करती है, इसमें कोई ठोस समाधान नहीं पाया जाता है। धर्मी जन प्रायः कष्ट भोगते हैं, और जो हम समझ पाते हैं वो ये है कि हम इसका कारण नहीं जानते। भले मनुष्य दुख उठाते हैं, क्यों हम नहीं जानते। धर्मी जन प्रायः बीमार रहता है, क्यों हम नहीं जानते। पापी को समृद्धि प्राप्त होती है, क्यों हम इसका कारण भी नहीं जानते। क्योंकि हम इन विषयों का कारण नहीं जानते हैं, इसलिए हमें आयुब के समान अनुचित निर्णयों पर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसा उसने कहा कि धार्मिकता का जीवन निरार्थक है, क्योंकि तुम्हें दुख तो उठाना ही है। आयुब ने अपने जीवन में इस प्रकार के अनुचित निष्कर्ष निकाले थे। हमें जिस बात को जान लेना है वो ये है कि इन वर्तमान दुखों की तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती जो मसीह के आगमन पर हम में प्रकट की जाएगी और अनंतकालीन होगी। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 पद, क्योंकि हमारा पल भर का सा क्लेश हमारे लिए ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। उसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब परमेश्वर हमसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तब उसके मन में अनंत का विचार होता है, जबकि मेरे मन में आज और कल का ही विचार होता है। मैं अपनी आज की सुविधा, अपने आज के आराम, आज की समृद्धि के बारे में सोचता हूँ, जबकि परमेश्वर मेरी अनंत सुविधा और समृद्धि की चिंता करता है। अतः परमेश्वर के मन में आपके बारे में अनंतकालीन विचार रहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसके राज्य की आशीषों का अनंत काल तक आनंद प्राप्त करें। ये अति संभव है कि कुछ वर्तमान बातें हैं जो आपके लिए ठोकर का कारण है और आपको खड में गिरा सकती है। अतः परमेश्वर इन बातों को आपके मार्ग से निकाल देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ अनंत काल का जीवन बिताएं। अतः आप ये न समझे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रखता है और वो आपसे क्रोधित है, वो आपको दंड दे रहा है। वो तो वास्तव में आपकी भलाई के लिए ये सब कर रहा है। वो आपके जीवन के बारे में आपसे अधिक जानता है। वो आपके इर्द गिर्द की दुनिया और आपकी दुर्बलताओं के बारे में भी आपसे अधिक जानता है। सत्य तो यह है कि वो आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है और सुरक्षित रखता भी है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, तब वे मेरी दाढ़ी बनाने के साधनों से खेलना बहुत पसंद करते थे, परंतु मैं उन वस्तुओं से उन्हें दूर रखता था। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं उन्हें खुश देखना नहीं चाहता था। मेरी चिंता का विषय ये था कि उनके हाथ ब्लेड से कट न जाए या उनका चेहरा न कट जाए। तो क्या मैं वास्तव में उनसे क्रोधित था या उनसे प्रेम नहीं करता था या उनकी भलाई नहीं चाहता था? नहीं, मैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। मेरे विचार में हम अनेक बार परमेश्वर से अप्रसन्न हो जाते हैं, उसे क्रोधित हो जाते हैं। प्रभु, मुझे ये नहीं वो चाहिए, तू मुझे खुश क्यों नहीं रहने देता है? परमेश्वर जानता है कि आपको उससे नुकसान होगा और आपका नाश हो जाएगा। वो जब भी आपके बारे में सोचता है, उसके मन में आपके अनंत जीवन का विचार रहता है। यही कारण है कि हम अपने जीवन में आने वाली असुविधाओं और कमियों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अनंत योजनाओं को थामे हुए काम करता रहता है। यदि आप इस सत्य को समझ ले तो आप दुष्ट या अधर्मी की समृद्धि पर विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आप जान लेंगे कि वो एक दिन काट डाला जाएगा। आप अपने जीवन के कष्टदायी अनुभवों पर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने राज्य के अधिकतम प्रतिफल के निमित्त विचार कर रहा है। यही एक मुख्य कारण है कि याकूब हमसे कहता है, याकूब 1:2-3, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो और कहना, यहोवा की स्तुति करो, मुझ पर बड़ा क्लेश आया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे अग्नि परीक्षा से निकाल रहा है। मेरा आज आग से निकलना और मेरे कार्यों का आग में परखा जाना उस दिन से उत्तम है जब वे सब आग में धुआं हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, उसके मन में आपके लिए अनंत जीवन का विचार बसा रहता है, इसलिए उसका व्यवहार आपके साथ उस अनंत जीवन के विचार से होता है। पिता, हमारे साथ तेरा व्यवहार जैसा भी है, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमारी नादान शिकायतों के लिए हमें क्षमा करना, हमारे मूर्खता भरे दोष जो हम तुझे देते हैं उनके लिए हमें क्षमा करना। वे हमारी बुद्धिहीनता का उदंडता है, हमारी समझ की कमी का परिणाम है। परमेश्वर, अपने मार्ग समझने में हमारी सहायता कर और हमें अपने मार्गों में ले चल। प्रभु जी, हमारे मन में भी अनंत जीवन का विचार वास करें। यीशु के नाम में आमीन।